स्वीकार किया। नवमं नवा पार्थिवं पृथ्वी का शासक, वपुः शरीर, दुध्य दुहते हुए, इमां ये सब, औषधि पृथ्वी की उपजे, विप्राह हे ब्राह्मण, तेना के द्वारा, अयम यह सह वह उषतमः अत्यंत आकर्षक। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद इस प्रकार है। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने नवे अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिसने विविध उपजे प्राप्त करने के लिए भूमि को जोता बोया। ये ठीक है, प्राप्त करने के लिए भूमि को जोता बोया, फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। तात्पर्य, राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व अनेक पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों, मुनियों तथा ब्राह्मणों ने भगवान से न केवल अवतरित होने के लिए प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण के देखभाल करें। जब भी राजा अपने कर्तव्य पालन में थोड़ी भी असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दें, क्योंकि ये बुद्धिमान व्यक्ति सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण के अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अतः राज सिंहासन पर न बैठकर उन्होंने भगवान के अवतार लेने की प्रार्थना की और वे महाराज पृथ्वी के रूप में प्रकट हुए। वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनैतिक पदों की स्पृहा नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी से उनके अनेक उत्पादक खोज निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक हो गया। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कामिने। हरे कृष्ण। भगवान का यहाँ पे नवे अवतार के रूप में महाराज पृथु को गिनाया गया है। भगवान के 24 अवतार हैं, मुख्य 24 अवतार, उसके बाद उसके अंतर्गत नवे अवतार में पृथु महाराज को गिनाया। पृथु महाराज के पिता है वेन, वेन करके एक राजा हुए, और वो वेन राजा जो थे वो बहुत ही दुष्ट राजा था। और दुष्ट इस प्रकार था क्योंकि वो कभी भी ब्राह्मणों की आज्ञा को मानता नहीं था। ब्राह्मण और साधु पुरुष जो आज्ञा देते थे उन आज्ञाओं को वो स्वीकार नहीं करते थे। तो उनकी आज्ञाओं को स्वीकार न करने के कारण और यज्ञ आदि क्रियाओं को बंद करवा दिए थे और गौ हत्या आदि करवाते थे, साधु ब्राह्मणों का वध करवाते थे। इस प्रकार ये जो दुष्प्रवृत्ति के कार्य को वेन करते थे और वेन की इस क्रियाओं को देखकर ऋषि भीर याचितो भेजे। ऋषियों ने क्या किया, याचितो याचना किया, और उनकी याचनाओं को सुनकर भेजे नवमं पार्थिवं वपु। भगवान ने नौवा शरीर पार्थिवं वपु, भगवान ने नौवा शरीर धारण मतलब स्वरूप धारण किया। दुत्मे माम औषधिर विप्रा, पृथ्वी से या फिर पृथ्वी का दोहन करके, पृथ्वी को दोह के अर्थात पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया था और उनके दूध स्वरूप में औषधि आदि वस्तुओं को प्राप्त किया। और स्तेनायम स उषत्तम, भगवान का ये जो स्वरूप था और ये क्रियाएं थी वो बहुत ही आकर्षक थी लोगों के लिए, है ना, पूरे ब्रह्मांड के लिए। महाराज पृथु जो है वो वेन के पुत्र है, वेन का वध ऋषियों के द्वारा हो गया, ऋषियों ने श्राप दिया और वेन का वध हुआ, है ना, वेन की मृत्यु हुई। और जैसे ही वेन राजा की मृत्यु हुई तो चोरों का उत्पात बढ़ गया, है ना, क्योंकि जब राजा अपने शासन पे नहीं हो, है ना, राजा की पदवी जब खाली होती है तभी ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती है, तो चोर आदि लोगों की संख्या बढ़ने लगी और लोग बेकार के कार्य करने लगे जो कार्य नहीं करने चाहिए, है ना, उन सारे कार्यों में रत होने लगे। तभी ऋषियों के द्वारा रहा नहीं गया और उन्होंने क्या किया, उस वेन के शरीर को ही क्या कर दिया, मथ डाला। मथ डाला मतलब उनकी जंगाओं को रगड़े, और उनकी जंगाओं को रगड़ने से उनमें से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई, जो एक थे राजा पृथु और दूसरी थी अर्ची, उसमें से दो जन उत्पन्न हुए, एक स्त्री कन्या उसका नाम था अर्ची और एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम था पृथु। पृथु जो है वो भगवान का शक्त्यावेश अवतार है, राजा पृथु जो है वो भगवान का शक्त्यावेश। तो ये वेन के शरीर में से भगवान प्रकट हुए, है ना, और भगवान की शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा स्वयं अर्ची के रूप में प्रकट हुई। आगे चल के अर्ची ने ही पृथु को स्वीकार किया अपने पति के रूप में, है ना, और तुरंत ही जैसे ही उनका जन्म हुआ कुछ समय के बाद, कुछ समय मतलब वो ऋषि वहीं पर खड़े थे, खड़े खड़े उसका राज्याभिषेक भी कर दिया। ऐसा नहीं कि वो बच्चे थे, बाल लीला किए, फिर बड़े हुए उसके बाद उसको आसन दिया, ऐसा नहीं, वो जैसे ही प्रकट हुए तुरंत, है ना, नवयौवन शरीर था उनका और उनको तुरंत राज्य का कारोबार दे दिया गया। और जैसे ही उनको राज्य का कारोबार दिया गया और राज पदवी के ऊपर जब उसको बिठाया गया, तभी सभी ऋषिगण और देवतागण उनकी प्रशंसा करने लगे कि स्वयं भगवान के स्वरूप में आप यहाँ पर अवतरित हुए हैं और आप इस पृथ्वी को दोहन करने वाले हैं, प्रजाजनों को रक्षा करने वाले हैं, यदि इंद्र वर्षा न बरसाए तो आप खुद समर्थ हैं कि उस राज्य में वर्षा आप बरसा सकते हैं। इस प्रकार से जब उनका गुणगान कर रहे थे तो पृथु महाराज ने कहा कि भाई अब तक तो मैंने कुछ किया नहीं है, और करने से पहले अगर आप ऐसा बोल रहे हो, अगर नहीं हुआ तो तुम लोग की बेइज्जती हो जाएगी। आप लोग क्यों पहले से ऐसी प्रशंसा कर रहे हो? मान लो आगे चल के मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी वचन की कुछ वैल्यू होती है ना, तुम्हारे वचन का कुछ है ना, इसलिए आप सोच समझ के बोलिए, आप ऐसा बोलो मत, क्योंकि भरोसा नहीं आगे चल के क्या। तभी पृथ्वी महाराज ने जब ऐसा कहा तभी उन ऋषियों ने फिर से उनके गुणगान करना चालू किया और खूब लंबे समय तक उनकी स्तुति किए, और उसके बाद उनको राज्य का कारोबार सौंप दिया गया। और समय बीतते बीतते वहां की जो प्रजा थी वो बहुत ही दुखी थी, क्योंकि उनको खाने के लिए पृथ्वी पर्याप्त अन्न दे नहीं रही थी, क्योंकि राजा वेन था और राजा वेन के समय पे पाप इतना बढ़ गया था और राजा बाकी राजा भी इतने बदमाश हो चुके थे कि उनके क्रियाकलापों को देखकर पृथ्वी माता बहुत ही क्रुद्ध हो चुकी थी है ना, और किसी को अन्न और औषधियां दे नहीं रही थी। और जब अन्न और औषधि न देने के कारण सारे प्रजाजन बहुत ही दुखी थे, और दुखी होने के कारण उनके राजा थे पृथु, तो पृथु महाराज के पास जाके सारे ऋषि और प्रजाजन ने क्या किए, उनसे प्रार्थना किए कि आप कृपा करके हमारी रक्षा करो, क्योंकि हम जो है वो भूख की अग्नि में सूखे जा रहे हैं ना, और एकदम जैसे वृक्ष को जल न दिया जाए तो कैसे उनके पत्ते वत्ते जड़ जाते, एकदम लकड़ी लकड़ी बसता है ना, उसी प्रकार हमको भी अन्न न मिलने के कारण, हमारी जठराग्नि को संतुष्ट न होने के कारण हम भी जो है वो कैसे हो गए हैं, वो सूखे लकड़ियों की तरह होते जा रहे हैं, इसलिए कृपा करके हमारे पर कुछ कृपा कीजिए है ना। तभी पृथ्वी महाराज से अपनी प्रजाजनों का दुख जो है वो देखा नहीं गया, और पृथ्वी महाराज ने फिर क्या किया, पृथ्वी महाराज ने अपना धनुष बाण उठाया और उसमें सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे शिवजी क्रोध में आकर कभी कभी अपना सारंग धनुष उठा के जैसे किसी के ऊपर छोड़ देते हैं तो व्यक्ति तिलमिला जाता है, मतलब अपने आप को संभाल नहीं पाता, वैसे शिवजी जो है वो क्रोध की मूर्ति ही है ना, और जब भी वो क्रोधित हो जाए तब क्या होगा, तो वैसे ही पृथ्वी महाराज जब पूर्ण क्रोधावेश में आके उन्होंने अपना धनुष बाण चढ़ाया और पृथ्वी की ओर जैसे ही लक्ष्य किया तो पृथ्वी से रहा नहीं गया, पृथ्वी बिल्कुल डर के मारे गाय का स्वरूप बनाकर भागने लगी, और पृथ्वी महाराज अभी क्रोधावेश में आके उसके पीछे उस धनुष बाण को लेके मतलब अभी पृथ्वी का वध कर देंगे, छिन्न भिन्न कर डालेंगे पृथ्वी को, इस प्रकार से उनके पीछे दौड़े। खूब दौड़ने के बाद जब भी पृथ्वी को पता चला कि अब मेरे पास कोई उपाय, तभी उन्होंने क्या किया, पीछे मुड़ के उनकी चरणों में उन्होंने उनको शरणागत कर दिया अपने आप को, और जैसे ही अपने आप को शरणागत कर दिया तभी राजा का एक कर्तव्य होता है कि जो व्यक्ति अपने शरणागत होता है तभी उसका वध नहीं करना चाहिए और उनको रक्षा प्रदान करनी चाहिए है ना, ये राजा का कर्तव्य होता है। तो पृथ्वी महाराज भी अभी कंफ्यूज हो गए कि अब तो उसको मारने वाला था लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, मेरी शरण, अभी इसको मार नहीं सकता, जैसे परीक्षित महाराज में भी ऐसा हुआ था, कलयुग जो था वो पहले डर के मारे भागा लेकिन जैसे ही पता चला कि परीक्षित के सामने मेरा कुछ चलने वाला, उसने क्या किया, परीक्षित महाराज की शरण ली, और उनकी शरण लेकर फिर परीक्षित महाराज भी सोचे कि अब मैं क्या करूं, तो परीक्षित महाराज फिर उनको शरण दिए कुछ कुछ स्थानों पर ना, उसी प्रकार पृथ्वी ने भी पीछे मुड़ के तुरंत उनके चरणों में गिर के क्षमा याचना की और बोले कि हमें क्षमा करना, मैं अपराधी हूँ, लेकिन आप तो शरणागत वत्सल है, और उनकी स्तुति करना चालू किया। और जैसे ही पृथ्वी ने स्तुति करना चालू किया, हालांकि धनुष ऐसा खींच के खड़े थे वो तो नीचे रख लिए स्तुति सुनते ही, लेकिन उनका जो क्रोध था वो जा नहीं रहा था, उसने कहा कि तुम क्यों अपने पुत्र समान इस जीवात्माओं को अन्न प्रदान नहीं कर रही हो, क्या कारण है? तो उसने कहा कि इस पृथ्वी पे कई सारे ऐसे राजा है जो केवल उस अन्न का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कर रहे थे है ना, और धन संग्रह करके प्रजा को वैसे ही दुखी कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि और ये औषधियां और अन्न जो है वो भगवान विष्णु और साधु पुरुषों की सेवा में नहीं लग रहा था, इसलिए क्रुद्ध होकर मैंने ये सारी औषधियां और अन्न देना, देखिए पृथ्वी माता का यह वचन है, या फिर वो इस बात से भी क्रुद्ध होती है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान विष्णु को भोग लगाए बिना केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए खाता है तो पृथ्वी माता इस बात को सहन नहीं कर सकती है। एक रीजन ये भी बताया और दूसरा रीजन ये भी बताया कि अगर उन अन्न को और औषधियों को अगर साधु पुरुष की सेवा में भी नहीं लगता है तो वो देने के लिए तैयार नहीं है। एक जगह पे हम सुने थे कि ये जो अन्न औषधि और इस ब्रह्मांड में जितने भी भोग्य वस्तु है वो केवल भगवान और भक्त के लिए ही निमित्त है, बाकी कोई इसको भोग नहीं सकता है। वो भोग ले और कचड़ा जो बच जाए बाकी लोग को भोगना चाहिए। तो प्रथम अधिकार भगवान का है और उसके बाद उसके भक्तों का, और उसके बाद जो बचा कुचा बाकी लोग भोगे। अगर ये सिस्टम है, अगर इस सिस्टम से नहीं चलता और बाकी लोग भोगते और भगवान और भगवान के भक्त जब तभी पृथ्वी इस बात को सहन नहीं करती और अनाज देना अन्न देना बंद कर दी। तो पृथ्वी माता के इस वचनों को सुन के पृथ्वी महाराज फिर भी उनका क्रोध जो था वो संतुष्ट नहीं हो रहा था ना, क्रोध जो शांत नहीं हो रहा था, तभी जाके और याचना किए और उन्होंने लास्ट में जब भी उनसे नहीं रहा गया तो लास्ट में उन्होंने क्या कहा कि आपने जो वरावतार लिया था तभी आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। धरती जो है पृथ्वी वो किसकी पत्नी है? भगवान विष्णु की। और पृथ्वी महाराज कौन है? भगवान के विष्णु के अवतार। तो पृथ्वी महाराज भी भगवान विष्णु है, तो मान लो अपने पति को वो पत्नी बोल रही है कि आपने मेरे को शादी की, आपने मुझसे शादी किया और आपसे आपने मुझसे पुत्र भी उत्पन्न किया, तो बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी पत्नी के ऊपर हाथ मतलब उसको अपने आप को मार से बचाना था, नहीं तो आज निश्चित था कि एक तो पढ़ने ही वाली है तो कुछ तो तर्क देना पड़ेगा ना, मार खाने से बचने के लिए कुछ तो तर्क देना ही पड़ेगा। तो उसने कहा कि देखो आपने जब वरावतार लिया था तभी आपने मुझसे पुत्र उत्पन्न किया था और आपने मुझे पत्नी के रूप में भी स्वीकार किया था, और ऐसा साधु वर्ग और बुद्धिमान वर्ग ये कहता है कि स्त्रियों के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाना। लेकिन पृथ्वी महाराज का क्रोध और भी जा नहीं रहा था, और फिर आगे जाके पृथ्वी महाराज ने कहा कि ये सारी बातें मुझे नहीं सुनना, अब उपाय क्या है जल्दी बताओ, क्योंकि मैं अपनी प्रजाजनों को दुखी नहीं दे सकता है ना, उनको बिना अन्न के तड़पते हुए मैं देख नहीं सकता, इसलिए तुम क्या कर सकते हो ये बताओ। तभी पृथ्वी ने कहा कि देखो मैंने कई वर्षों से अन्न और औषधियां प्रदान नहीं करने के कारण वो बीज जो है वो बहुत ही गल चुके हैं और उसका कोई बाहर आने पर भी इतना प्रभाव नहीं होगा, इसलिए आप एक काम कीजिए, मैं गाय का रूप धारण करती हूँ और आप जो है उनमें से जो चीज प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्त कर सकते, लेकिन आप सोच लीजिए किसको बछड़ा बनाना है और कौन उसको दोहने वाला बनेगा। तो इस प्रकार से जब भी मैं अपने बछड़े को, बछड़ा मीन्स उसका बच्चा है ना, अपने बेटे को जब भी दुखमय अवस्था में या फिर उनके ऊपर वत्सल्य मेरा जब भी प्रेम उबड़ेगा तभी जाकर ये बीज और आदि जो है वो मेरे से बाहर आ पाएगा, अन्यथा अब ये बाहर आना संभव नहीं लग रहा। तभी पृथ्वी महाराज ने कहा ठीक है, और फिर आगे चल के पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया और पृथ्वी महाराज जो है स्वयं बछड़े के रूप में बने है ना, और उन्होंने क्या किया उस गाय को दोहवाया ऋषियों के द्वारा, और ऋषियों ने उसमें से फिर अलग अलग रूप से जैसे देवता मतलब ये तो पृथ्वी के राजा थे इसलिए उन्होंने दोहा है ना पृथ्वी के लिए, और ऋषियों में भी एक ऋषि को उन्होंने बछड़ा बनाया और बाकी ऋषि जो थे उन्होंने गाय का दूध दोह के, और दूध नहीं निकलता था उसमें से दूध नहीं निकलता, जो व्यक्ति जो चाहता वो निकलता। ऋषियों ने वेद की ऋचाओं को प्राप्त करने के लिए उनको दोहा तो उसमें से वेद की ऋचाएं प्राप्त हुई, और योगियों में एक योगी को उन्होंने माध्यम बनाया बछड़ा बनाकर उसमें से अष्ट सिद्धियों को प्राप्त किए, समझ रहे? तो गाय में से अष्ट सिद्धि प्राप्त किए, वेदों को प्राप्त किए, और इंद्र ने क्या किया, इंद्र को बछड़ा बनाया गया और एक देवता ने फिर से उस गाय को दोहा, और उस दोहने के कारण उस देवताओं ने भी कुछ चीजों को प्राप्त किए, और उसी प्रकार असुर लोग भी आए, असुर लोग भी उस पृथ्वी का लाभ लेने के लिए। असुर लोग आए और असुरों में श्रेष्ठ कौन है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को बछड़ा बनाए क्योंकि पृथ्वी माता प्रहलाद महाराज को देख के, अपने पुत्र के भावनाओं से देख के उसमें वात्सल्य भाव उमड़ने के कारण उसमें से कुछ प्राप्त हो सके। तो जैसे ही प्रहलाद महाराज को बछड़ा बनाया और असुर लोग जैसे ही दोहने गए तो उसमें से क्या निकला? उसमें से मदिरा आदि निकला। क्योंकि असुर लोग क्या चाहते? वही चाहते, इसलिए उसमें से मदिरा। और देवताओं ने जब दोहा तो भी उसमें से सोम रस निकला था, जो शक्तियों को वर्धन करता है ना, शरीर को हृष्ट पृष्ट रखता है। तो देवताओं ने जब भी मथा तभी उसमें से सोम रस निकला, और जब असुरों ने मथा तो उसमें से मदिरा निकला। तो जिसकी जो रुचि उस प्रकार से उसमें से प्रकट होते गया, और जब ऋषियों ने मथा तभी उसमें से वेद की ऋचाएं प्राप्त हुई, और योगियों ने मथा तभी उसमें से अष्ट सिद्धि आदि प्राप्त हुई, और भी है, गंधर्वों ने भी उसको मथा, किन्नरों ने, चारणों ने, इन सारे जितनी जितनी जातियों के लोग थे, इवन पशुओं ने भी मथा। पशुओं में से सिंह को बछड़ा बनाया गया, और सिंह को बछड़ा बनाने के बाद बाकी पशुओं ने उसमें से जब भी उसको दोहना चाहा तो उसमें से मांस आदि निकला, क्योंकि पशु जो है वो क्या खाएगा? मांस खाएगा, इसके लिए उसको मांस प्राप्त हुआ। और बाकी जो जानवर थे है ना, जो शाकाहारी है, उन्होंने जब भी घास आदि खाते, उन्होंने जब भी मथा तभी उसको मथने के कारण उन लोगों को घास, हरी हरी घास प्राप्त हुई है ना। तो इस प्रकार पृथ्वी को सारे इस ब्रह्मांड के सभी लोगों ने मथ, और उसको मथने के बाद उसमें से कुछ न कुछ वस्तुओं को प्राप्त किए। और फिर पृथ्वी माता ने अंत में एक निवेदन किया पृथ्वी महाराज को कि हे पृथ्वी महाराज, आप कृपा करके अगर ये व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, ये जो जमीन उबड़ खबड़ जमीन है इसको पहले लेवल बनाइए, क्योंकि ऐसी जमीन में कभी खेती नहीं हो पाती है ना। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, पहले इसको लेवल बनाइए। तभी पृथ्वी महाराज ने अपने धनुष के सहारे से, बाणों के सहारे से सारी पृथ्वी को लेवल कर दिया। कुछ कुछ जगहों पर पर्वत रखे है ना, क्योंकि पर्वत की भी आवश्यकता होती है, तो कुछ कुछ जगहों पर छोड़ दिए, बाकी सारी जगहों पे क्या कर बना दिया, पूरा एकदम लेवल बना दिया है ना, ताकि अच्छे से किसान खेती कर सके और अच्छे से उसमें से फसल निकाल सके। तब इस प्रकार से पृथ्वी महाराज ने सारी पृथ्वी को लेवल किए। उसके बाद पृथ्वी महाराज का जो राज्य था वो बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था, और उसका राज्य कहाँ पर था पता है? गंगा और यमुना के बीच का जो राज्य था वो वहां पर उसका मतलब राजधानी था, गंगा और यमुना के बीच वाला प्रदेश उसको अपना राजधानी बना के रखे हुए। और पृथ्वी महाराज को पृथ्वी ने आदेश भी मतलब निवेदन किया था कि अगर आप इस पृथ्वी को समतल बनाते हैं तो यहाँ पे आके ये जो ग्राम्य व्यवस्था है, पहले इसके पहले पृथ्वी महाराज के शासन से पहले लोग यहाँ वहां, कोई वहां रहेगा, कोई उधर, और 10 किलोमीटर दूर उधर, एक घर उधर, एक घर सब अपने अपने से रहते थे, कोई साथ में मिल के नहीं रहता था, क्योंकि ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी है ना। फिर पृथ्वी महाराज ने ये ग्राम्य व्यवस्था का, सबसे पहले ग्राम्य व्यवस्था जो है वो किसने चालू किया? पृथ्वी महाराज। उन्होंने गांव की शुरुआत की, एक गांव यहाँ रहेगा, दूसरा, तीसरा, ऐसे कुछ कुछ अंतरों पे गांव बनेंगे। तो ये सारी व्यवस्था पृथ्वी महाराज के द्वारा संपादित की गई। और फिर समय जाते जाते पृथ्वी महाराज इस भूमंडल के राजा थे, और उन्होंने इच्छा प्रकट किया कि मुझे अश्वमेघ यज्ञ करना है। पृथ्वी महाराज को क्या करना था? अश्वमेघ, क्योंकि कई सारे राजा महाराजा हुए जिन्होंने इस भूमंडल के राज्य को प्राप्त करने के बाद उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करना पसंद किए थे। और अश्वमेघ यज्ञ जब उनको करना था तभी उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ तो कर दिए ऋषियों के सहारे से। और जैसे ही अश्वमेघ यज्ञ हो रहे थे, करीबन 99 अश्वमेघ हो गए और आप जानते हैं कि अगर 100 वर्षों में एक यज्ञ हो जाए तो क्या होगा, इंद्र बन जाएंगे, है ना, इसको इंद्र का सिर देना पड़ेगा। इसलिए इंद्र को भी डर लगने लगा कि ये अगर अश्वमेध कर लेगा तो मेरा सिर खाली करना पड़ेगा। तो इंद्र को बहुत ही डर लगता है, अपनी सीट के पीछे पागल रहता है इंद्र, और उनसे रहा नहीं गया। और इंद्र ने क्या किया, फिर अंत में उस अश्वमेघ यज्ञ में जो अश्व छोड़ा जाता है, अश्वमेघ यज्ञ का आप नियम जानते हैं ना, अश्वमेघ यज्ञ जो राजा करेगा वो पूरे भूमंडल में वो अश्वमेघ अश्व घूमेगा, अश्व मतलब घोड़ा, उस घोड़े को पूरे भूमंडल में छोड़ा जाता है और उसके साथ में कोई उसका रक्षक होता है ना, घोड़े का कोई रक्षक होता है। और जिसको आपत्ति हो कि ये पूरे भूमंडल का राजा या फिर सर्वाधिक शक्तिमान ये राजा नहीं है, तो वो उसको ललकारे, उसके घोड़ों को चुरा दे। तो कोई राजा ऐसा समर्थ नहीं था जो पृथु महाराज के उस घोड़े को ले ले। लेकिन इंद्र को रहा नहीं गया, ईर्ष्यावश है ना, ईर्ष्यावश उस इंद्र ने क्या किया, उस घोड़े को चुराया, घोड़े को चुराया। और उसकी रक्षा करने के लिए किसको नियुक्त किया था, पृथु का जो पुत्र था उसी को छोड़ा गया। तो पृथु महाराज को पुत्र भी बहुत ही शक्तिशाली था, उतने में उसने देखा कि ये जो घोड़ा था वो तो किसी ने चुरा लिया, और उस घोड़े को एक ऋषि लेकर जा रहे हैं, है ना, एक साधु का, एक सन्यासी का वेश लिया हुआ एक व्यक्ति उस घोड़े को चुरा के जा रहा है। और जैसे ही देखा तो उससे रहा नहीं गया, उतने में अत्रि मुनि वहां पर आए, और अत्रि मुनि ने आके कहा कि क्या कर रहे हो, तुम्हारा घोड़ा और वो कोई दूसरा नहीं, उस घोड़े को अपने पास रखो, वो ऋषि नहीं है, वो सन्यासी नहीं है, वो कौन है, इंद्र चोर है ना, वो चोर इंद्र है, इसके लिए आप उसको पकड़ो और अपने पास रखो और अपना अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करो। तभी लेकिन वो सन्यासी के वेश में था, इसलिए उस पृथु के पुत्र ने उसका वध नहीं किया, नहीं तो उसको वहीं पर मार डालते। अगर इंद्र अपने मूल स्वरूप में होता तो उसको छोड़ते नहीं, लेकिन देखा कि वो सन्यासी का रूप लिया हुआ है, इसलिए उसने उसको मारा नहीं, उस घोड़े को ले लिया और उस इंद्र को छोड़ दिया। और आगे जाके इंद्र अदृश्य होकर अपने धाम में चला गया। लेकिन वो घोड़े को लेके जब वापस आ रहे थे तो यज्ञशाला में पहुंच गए। इंद्र को और अभी भी संतुष्टि नहीं हो रही, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं पृथु के पुत्र से युद्ध कर लूंगा तो निश्चित है कि मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। इसलिए उसने क्या किया, यज्ञशाला में बिल्कुल अंधेरा कर दिया, सूर्य को हटा के, और बिल्कुल अंधेरा करके उस घोड़े को लेके निकलने वाले थे, है ना, उस घोड़े को फिर से चुराया यज्ञशाला से। और वहां पे तो पृथु महाराज भी उपस्थित थे, और उस यज्ञशाला से जैसे ही उस घोड़े को चुरा के निकलना चालू किए तो वहां पे अत्रि मुनि ने फिर से क्या किया, वहां पे हैलोजन लगाया, वहां पे लाइट्स ऑन किया सारी, है ना, क्योंकि रात तो हो गई, अभी इन सूर्य तो उसके बस में ही है। तो उसने क्या किया, फिर से लाइट चालू करके बोला कि देखो। और वहां भी इंद्र वापस जब आया था तभी फिर से सन्यासी का रूप लेके आया था, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर मैं अपने मूल रूप में जाऊंगा तो ये बाप बेटे में से एक मेरे को छोड़ेंगे नहीं। तभी ऋतु महाराज जब देखे कि इंद्र है ना सन्यासी का रूप लेके उसको उसके घोड़े को लेके जा रहा है, तभी ऋतु महाराज जब उसके सामने केवल दृष्टिपात की, उसके सामने देखे, तो इंद्र को पता चला कि अभी मेरी हालत खराब है ना, और उसने क्या किया, उस घोड़े को छोड़ के वहीं से भाग गया। देखो युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है, किंतु फिर भी कीड़ा किए बिना ईर्ष्या एक ऐसी वस्तु है कि व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं होने के बावजूद भी उसको है ना उसके साथ पंगा तो ले ही लेता है। इसलिए ईर्ष्या जो है वो सबसे बड़ा व्यक्ति का शत्रु है ना। आप जानते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद, ये जो है वो सारी चीज भगवान की सेवा में लग सकती है, किंतु ये जो मात्सर्यता है वो भगवान की सेवा में नहीं लगती है। काम को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, क्रोध को भी लगा सकते हैं ना, काम क्रोध लोभ है ना, इन सारे वस्तुओं को हम भगवान की सेवा में लेकिन ये ईर्ष्या एक ऐसी वस्तु है जो भगवान की सेवा में कभी नहीं है ना। इसलिए ईर्ष्या को तो व्यक्ति को दबाना ही पड़ेगा, अपनी भक्ति और साधना के बल पर उसको जलाना पड़ेगा या दबाना पड़ेगा, इसका और कोई उपाय नहीं। इसलिए ईर्ष्यावान व्यक्ति कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है ना। भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम अनसुया हो, है ना। अनसुया मतलब आप ईर्ष्या से रहित हो, इसलिए मैं इस ज्ञान को आपको इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्षामि अनसुयवे। भगवद गीता का 9वें अध्याय का प्रथम श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप अनसूय हो, मतलब आप में कोई ईर्ष्या नहीं है ना। और ये भगवत ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो ईर्ष्या से रहित हो, है ना। ईर्ष्यावान व्यक्ति कभी भगवत ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ईर्ष्या के कारण इस इंद्र की इस हालत को देख के, अब जैसे ही वो सन्यासी के रूप में था पहले, लेकिन जैसे ही इंद्र अपने मूल स्वरूप में आया तो तुरंत पृथु महाराज ने अपना धनुष उठाया और उसके सामने तान लिया। सोचे कि आज इंद्र को मैं नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही उन्होंने उसके सामने उसका वध करने के लिए भागे तो तुरंत वहां पे ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने उसको रोक लिया। ब्रह्मा जी ने बोला कि ऐसा मत करो, क्योंकि इंद्र जो है वो भी भगवान की ही एक शक्ति है ना। भगवान की कृपा से वो इंद्र बना है, इसलिए आप उसका वध करके भगवान का अपमान मत करो। तो जैसे ही सुना कि अगर मैं इसका वध करता हूं तो भगवान की शक्तियों का अवहेलना होती है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं उसको नहीं मारता। और फिर इंद्र तो वहां से भाग गया। और फिर ब्रह्मा जी ने कुछ समय तक उसको समझाया कि देखो, आप तो आत्म तत्व ज्ञानी हो, है ना, आप तो अंत में मोक्ष के मार्ग पे जाने वाले व्यक्ति हो, आप मोक्ष के मार्ग के ज्ञाता हो, इसलिए आप इन सारी छोटी मोटी चीजों के प्रति ध्यान मत दो, है ना। इन छोटी छोटी बातों के प्रति अगर ध्यान दोगे, क्या कि इंद्र घोड़ा लेके चला गया और मेरा अश्वमेघ नहीं हुआ, तुमको थोड़ी अभी इंद्र बनना है, अभी तुम्हें इंद्र नहीं बनना, अभी ये राज्य के बाद तुम्हें सीधा भगवान के धाम में जाना है, है ना। आपको भगवत धाम प्राप्त होने वाला है, तो ये सब इंद्र के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो, है ना। ये छोटी मोटी चीजों के प्रति ध्यान आपको नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो छोटी छोटी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि इधर का उधर थोड़ा बहुत तो होते ही रहता है ना। तो उन सारी चीजों के प्रति अगर हम ध्यान देंगे तो हम अपने अंतिम लक्ष्य को क्या करेंगे, खो देंगे, नहीं पा पाएंगे, है ना। क्योंकि हमारा मन जो है वो कहाँ लग जाएगा, इन छोटी, इसने वो किया, उसने वो किया, इसने ऐसा, इसने ऐसा, तो इन सारी बातों में हमारा मन लगने से क्या होगा, हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो चूक सकते हैं, है ना। इसलिए भगवान ने कहा क्या, व्यवसायित्मक बुद्धि समाधोन विधीयते। व्यवसायित बुद्धि जो है, अर्थात विभक्त हुई बुद्धि, अन्य अन्य जगह यहाँ लगी है, यहाँ लगी, यहाँ लगी, इन सारी चीजों में लगी हुई बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसा बुद्धि वाला व्यक्ति कभी भी समाधोन विधीयते, वो कभी भी समाधि अवस्था, अर्थात एक एक व्यक्ति के ऊपर ध्यान स्थिर नहीं कर सकता, है ना। इसलिए एक एह गुरु नंदन, एक भगवान गुरु नंदन के ऊपर ही हमारा ध्यान केंद्रित। जैसे आप जानते हैं, जब द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को पूछा, है ना, उस जाड़ में जो पक्षी है उसमें क्या दिख रहा है, बोलता है कि सब कुछ दिख रहा है, जाड़ भी दिख रहा है, पत्ते भी दिख रहे, टहनी भी दिख रही, आकाश भी दिख रहा है, पोपट भी दिख रहा है। तो बोला ठीक है, चल साइड में आ जा। उस प्रकार सारे शिष्यों की परीक्षा लिया, लेकिन अंत में आके जब अर्जुन का नंबर आया तब अर्जुन को पूछा कि अर्जुन तुमको क्या दिख रहा है, तब अर्जुन ने कहा कि बस गुरु जी आप अगर आज्ञा दे तो उसकी आंख दिख रही है, और आप बोलो तो बाण छोड़ू और उस पक्षी को सीधा नीचे। तब गुरु जी ने कहा ठीक है, ये व्यक्ति ना अभ्यास में सिद्ध हुआ, क्योंकि जब तक हमारा लक्ष्य एक है किंतु ध्यान चारों ओर दे के रखा हुआ है तो वो व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए, है ना। इसलिए पृथु महाराज को यही उपदेश ब्रह्मा जी दे रहे, बोलते कि तुम्हारा जो गंतव्य है वो तो मुक्ति का मार्ग है और तुम इन सारी चीजों में कहां फंसे पड़े हो। हालांकि इंद्र बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, है ना। अश्वमेघ यज्ञ करके इंद्र के पद को प्राप्त करना बहुत छोटी बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसके मुक्ति के मार्ग पे जो चलता है उसके लिए तो ये भी क्या है, तुच्छ है ना। इसलिए ब्रह्मा जी के आदेशों को मानकर उसने कहा कि सही कहा आपने, मैं अपनी भगवान की माया के द्वारा मोहित हो गया था, इसलिए मैं भूल गया था अपने लेकिन अब मैं आपकी आज्ञा का, फिर ब्रह्मा जी वहां पे खड़े खड़े आदेश अपना उपदेश दिए और उसके बाद भगवान विष्णु भी वहां पर प्रकट हुए और भगवान विष्णु को प्रकट होते हुए देख के बहुत प्रसन्न हुए, है ना। और भगवान विष्णु जो कैसे आते हैं, भगवान विष्णु चतुर्भुज और गरुड़ के ऊपर बैठ के आते हैं ना, भगवान जब आते हैं तभी गरुड़। तभी पृथु महाराज ने जब देखा कि भगवान जमीन के ऊपर पृथ्वी को अपना चरण स्पर्श करवाए हुए हैं और अपना एक हाथ जो है वो कहां पे रखे हैं, वो गरुड़ के ऊपर, गरुड़ के ऊपर रखते हैं ना, जैसे गरुड़ जो था वो भगवान के यहां तक आ रहा था और गरुड़ के कंधे के ऊपर हाथ रखे भगवान मस्त खड़े थे और पृथु महाराज इस स्वरूप को देख के बहुत ही आकर्षित हुए और सभी लोग उसको प्रणाम करने लगे और अंत में जाके भगवान ने भी उसको उपदेश दिए, भगवान विष्णु ने भी, उन्होंने कहा कि तुम इस पृथ्वी को अच्छे से संभालो और इस पूरे प्रजाओं का अच्छे से शासन करो। और आगे जाके फिर पृथु महाराज का शासन जो है बहुत ही अच्छी तरह से और सुव्यवस्थित रूप से चला, है ना। और चलते चलते आगे उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को राज्य देकर वो वन में चले गए। देखिए ये जो प्रथा है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और फिर अंत में व्यक्ति को संन्यास, ये अवश्य लेना चाहिए। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि घर में मरने वाला व्यक्ति कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक अपने घर वालों से घिरा हुआ व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त करेगा तो कभी भगवान को स्मरण नहीं कर सकता। अगर मृत्यु को प्राप्त करना है तो व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान की भक्तों की संगति में रहे। आप कहेंगे तो फिर भगवान के भक्त अगर घर वाले को ही बना ले तब तो घर को छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं आएगी, है ना, क्योंकि सभी लोग भक्त है तो फिर घर को क्यों छोड़े। नहीं, फिर भी कुंती माता ने, अब कुंती पांडवों से बढ़ के कोई भक्त है क्या, पांडव जिनके पीछे पीछे भगवान दौड़ते थे फिर भी कुंती माता जब अपनी स्तुति करती है तभी उन्होंने कहा कि मेरी जो आसक्ति इन पांडवों के प्रति उसको छोड़ दो, इनको तोड़ दो, है ना, मेरी ये पांडव के प्रति आसक्ति कट जाए ऐसी कृपा आप मेरे ऊपर, नहीं तो उसके प्रति आसक्ति क्या, पांडव के प्रति आसक्ति हो जाए तो भगवान का धाम मिल सकता है व्यक्ति, है ना। तो फिर भी कुंती माता क्या बोलती है कि इन पांडव के प्रति मेरी जो आसक्ति है उसको आप काटिए। तो उसको काटने का मतलब क्या है कि ये जो भावना है कि ये मेरा बेटा है, है ना, ये भावना मरते दम तक व्यक्ति की जाती, इसलिए घर में बैठ के अगर कोई व्यक्ति मरा तो निश्चित है कि वो छूट नहीं पाएगा, है ना। इसलिए मरना भलो विदेश में, मरना भला कहाँ पे है, जहां न अपना कोई, जहां अपना कोई ना हो उस देश में मरना हमारे लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि घर वालों की ऐसे भी याद नहीं आएगी, है ना, सब लोग लात मार के भगा दिए ऐसे ऐसे, व्यक्ति अंत में भगवान का स्मरण करते करते जा सकता है ना। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो घर में कभी नहीं मरना चाहिए व्यक्ति, अगर घर में मरेगा भले ही वो काशी का भी वासी हो लेकिन घर में मरेगा तो जाएगा, फिर से घर में ही आएगा, इसलिए घर में मरना ठीक बात नहीं है ना। इसलिए अगर मृत्यु आती है तो व्यक्ति को घर में नहीं, भगवान के भक्तों के बीच में अगर मृत्यु हो तो इससे बढ़कर कोई मृत्यु नहीं है, क्योंकि भक्त लोग कीर्तन करेंगे, है ना, उसके। तो इस प्रकार फिर आगे जाके पृथ्वी महाराज ने संन्यास लिया और ऊर्ध्व गति को प्राप्त किया और फिर उनकी जो पत्नी थी उन्होंने देखा कि अब पति देव तो चले गए तो उन्होंने भी सती संस्कार जो होता है ना उस स्वीकार किया और उन्होंने भी उन आग की लपटों में अपने आप को डाल दिया। भगवान का स्मरण करते करते ऐसा नहीं, ऐसे ही नहीं चली गई, सती का मतलब रोते रोते और पटक के फेंका जाता है ऐसा नहीं होता है, है ना। लास्ट में ऐसा स्थिति हुआ था क्योंकि सती प्रथा चल रही थी कलयुग होने के बाद, तो क्या करते थे लोग, जब उसका पति मर जाते थे तो उसकी घरवाली को जबरदस्ती डाल दिया जाता, है ना, तो ये सिस्टम ठीक नहीं है, है ना। स्वेच्छा से होना चाहिए और दूसरा जब वो सती होती है उस समय उसको भगवान का ध्यान करते करते उस आग में प्रवेश करना होता है, भगवान से अपने मन को हटाना नहीं है। इस भावनाओं से जब वो सती होती है तब अपने पति के साथ में उस लोकों को वो प्राप्त कर सकती है, नहीं तो ऐसे जबरदस्ती जाएगी तो बिचारी डायन बन के उसी गांव में और उसी घर वालों को फिर से परेशान करेंगे ना, इसलिए प्रेत बनती है वो आत्मा, है ना। इसलिए स्वेच्छा से और भगवान का ध्यान करते करते सती होती है स्त्रियां, है ना। लेकिन कलयुग में यह मना किया गया। कलयुग में यह सती प्रथा भागवत पुराण अंतर्गत पांच चीजों को मना किया गया है। अश्वमेघम गवालंभम संन्यास कल्पे कृतम, अश्वमेघ और गौमेध यज्ञ और संन्यास कल्पे कृतम और देवरेण सुदोत्पत्ति कलो पंच विवर्तय, इन पांच कार्यों को कलयुग में मना किया गया। और ये सती प्रथा है उसको भी मना किया, कलयुग में इस प्रथा को कभी व्यक्ति नहीं करना चाहिए। तो फिर अंत में जाके जो अर्ची उनकी पत्नी थी वो भी क्या हो गई, सती तो को प्राप्त हो गई। और आगे जाके वो दोनों अपने स्वरूप को, मतलब वो स्वयं भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे। शक्त्यावेश मतलब एक जीव भगवान की शक्ति को धारण करके इस धरती पे, इस भूमंडल पे आता है और असाधारण कार्यों को वो करता है, है ना। जो इस भूमंडल में कोई नहीं कर सकता उस कार्य को वो करता है, इसलिए उसको शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है, है ना। इसलिए ये जो है पृथु महाराज वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार है और उन्होंने सबसे बड़ा काम किया हमारे लिए जो बेसमेंट तैयार किया इधर रहने के लिए। जो वापी भी जो है पहले उबड़ खाबड़ था, लेकिन पृथु महाराज ने क्या किया इसको प्लेन बनाया, है ना, क्योंकि घर बन पाए। तो आप देखेंगे पहाड़ी इलाकों में क्या हम लोग ऐसा घर बना पाए, बंगला बनाएगा कोई, कोई नहीं बना पाए। बनाएगा तो पता नहीं ठीक है, मतलब थोड़ा ऐसा इसमें कभी बंगला घर नहीं बनता, है ना। पृथु महाराज ने सबको एकदम लेवल बना के पूरा रहने की सारी व्यवस्था आदि किए और सबसे बड़ा कार्य किया पृथ्वी को जो है अपने स्वरूप में स्थित किया। नहीं तो पृथ्वी बिल्कुल रूठ गई थी और बोली थी कि आज के बाद कभी हम, तो पृथु महाराज के शासन में। और उन्होंने अपने प्रजाजनों को भी अंत में आगे जाके उपदेश दिए और उनकी प्रजाजनों में भी सारी प्रजा उनकी भगवान की भक्त थी, उनकी प्रजा भी सारी भगवान की भक्त थी। ऐसा नहीं कि कोई उसकी बात सुनता नहीं था, नहीं तो राजा होते हैं, कई राजा ऐसे होते जिसकी बात को कोई सुन, लेकिन ये राजा ऐसा था कि उनकी राज्य में सभी प्रजा भगवान विष्णु की भक्ति करते थे और हर कोई व्यक्ति उसमें एकादशी करता था और 16 माला मतलब नाम जप आदि करते थे। तो ये जो है पृथ्वी महाराज का शासन है, बहुत ही अच्छे भगवान के खुद भी भक्ति किए और अपनी प्रजाजनों को भी करवाए और सभी लोगों को मुक्ति के मार्ग की ओर ले गए। सबसे अच्छा राजा उसको माना जाता है जो अपनी प्रजाओं को भगवान की भक्ति में लगाए, सबसे अच्छा राजा उसको माना जाता है। बाकी जो राजा भगवान की भक्ति से विपरीत शिक्षाओं को प्रदान करता है, खुद भी ऐसे कार्यों में लगा रहता है, तो वो पूरा राज्य और राजा सभी लोग नरक के गामी बनते हैं, अंत में जाके वो नरक में ही गिरते हैं। और कलयुग में प्राय सब लोग कहाँ जाने वाले हैं, ये सब लोग ऐसा दौड़ रहे हैं, सब लोग की दौड़ ऐसी है और हमारी दौड़ कैसी है, उल्टी है। इसलिए थोड़ा दिक्कत तो होगा, ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे भागे, आप जानते हैं ना सब लोग अगर उल्टा स्टेशन पे अनुभव किए होंगे, है ना, स्टेशन पे जैसे ही ट्रेन आता है तो सब लोग ऐसा ऊपर चढ़ते ही रहते, ट्रेन में से सब लोग उतरेंगे, सब लोग हमको नीचे जाना होता है तो कितना दिक्कत होता है, सब लोग सामने ही, इसलिए कुछ समय के लिए रुक भी जाना पड़ता है, है ना। तो ऐसी हमारी भी स्थिति ऐसी है, सब लोग जा रहे हैं नीचे की ओर और हमको जाना है जहाँ पे रास्ता, सब लोग सामने, और अब सामने जाना केवल अपने अकेले को जाना नहीं है, उन सबको वापस क्या करना है, ले आप इधर किधर जा रहे हो, उल्टा चलो ये प्लेटफॉर्म पे गाड़ी नहीं आएगा, गाड़ी दूसरे। तो इस प्रकार से हमको भी करना है और अन्य लोगों को भी करवाना है, हालांकि कठिन है किंतु फिर भी असंभव नहीं है। हरे कृष्ण।
कलयुग को लेते हैं,